डैनियल की पुस्तक संख्या 85। भविष्य सूचक यात्रा का अनावरण। ऐतिहासिक मील के पत्थरों का दैवीय संबंध।
163 के विद्रोह के 126 वर्ष बाद 1979 में डैनियल के 11वें अध्याय के अंतिम 6 पदों की मुहर खुल गई। उसी तानफन जो ज्ञान पहली बार अनावृत हुआ, वो पवित्र इतिहास की सुधार रेखाओं की पहचान था। और ये उद्घाटन कि वे सब एक दूसरे के समानांतर हैं। फिर 1992 में अंतिम 6 पदों का प्रकाश खुलना शुरू हुआ। इन सत्यों की पहली सार्वजनिक प्रस्तुतियां 1904 में हुई और विषय सुधार रेखाएं था। 1996 में द टाइम ऑफ द एंड शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें डैनियल के 11वें अध्याय के अंतिम 6 पदों की पहचान की गई।
1996 वह वर्ष था जब संदेश को औपचारिक रूप दिया गया। ये एक मार्ग चिन्ह है जो 1831 में विलियम मिलर के संदेश को औपचारिक रूप दिए जाने के समानांतर है। मिलर का संदेश न्याय के प्रारंभ की घोषणा था और डैनियल 11 के अंतिम 6 पद न्याय के समापन की घोषणा थे। मिलर के संदेश का विषय बाइबल में प्रकट किया गया भविष्यद्वाणी का समय था। डैनियल 11 के अंतिम 6 पदों का विषय आधुनिक रोम उत्तर का नकली राजा था। मिलर को जो पद्धति प्रकट की गई वह भविष्यद्वाणी की व्याख्या के उनके 14 नियम थे। 1989 में जो पद्धति प्रकट की गई वह सुधार आंदोलनों की रेखा पर रेखा थी।
मिलर के कार्य में परमेश्वर के वचन को अंतिम प्राधिकार के रूप में स्थापित करना शामिल था, जो उन पापाई परंपराओं और रीति रिवाजों के विपरीत था जो 1260 वर्षों से संसार में प्रभावी रहे थे। इसी कारण मिलर का संदेश पहली बार 1831 में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार मिलर के संदेश को औपचारिक रूप दिया गया। ठीक किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशन के 220 वर्ष बाद फ्यूचर फॉर अमेरिका का कार्य था शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पापिसी के घातक घाव को चंगा करने में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की पहचान करना। इसी कारण द टाइम ऑफ द एंड पत्रिका 1996 में प्रकाशित की गई। इस प्रकार संदेश को औपचारिक रूप दिया गया। ठीक 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के 220 वर्ष बाद
प्रत्येक सुधार आंदोलन की विषय वस्तु को एक ऐतिहासिक संदर्भ बिंदु से जोड़ने वाले 220 वर्षों की पहचान 11 सितंबर 2001 के काफी बाद तक नहीं हुई, क्योंकि उसी तारीख को तीसरे हाय के आगमन के साथ ही प्रभु ने अपनी प्रजा को यिर्मयाह अध्याय 6 पद 16 और 17 के पुराने मार्गों पर वापस ले आया। वहीं 7 बार का प्रकाश पुनः खोजा गया और जैसे जैसे वो प्रकाश विकसित हुआ, यह स्पष्ट हुआ कि 220 वही संख्या है जो डैनियल अध्याय 8 पद 13 और 14 को जोड़ती है। पद 13 में भविष्यवाणी के इतिहास के छजोन दर्शन की पहचान की जाती है और पद 14 में प्रकट रूप के मारह दर्शन की पहचान की जाती है। इन दो पदों के बीच का संबंध ही वो बात थी जिसे गब्रियल डैनियल को सिखाने आया था, और डैनियल अंत के दिनों में परमेश्वर की उस प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है जो उन दोनों दर्शनों के बीच के संबंध को समझती है।
13वें पद का दर्शन 7 काल 3520 वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और 14वें पद का दर्शन 300 दिन वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यहूदा यरूशलेम और पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले यहूदा के दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 7 काल 777 राज ईसा पूर्व में शुरू हुए और यरूशलेम तथा पवित्र स्थान की पुनर्स्थापना को चिन्हित करने वाले 300 वर्ष 154 राज ईसा पूर्व में शुरू हुए।
220 वर्ष इन दोनों दर्शन को एक साथ बांधते हैं और संख्या 220 को उस संबंध का प्रतीक माना गया जिसके एक पक्ष में मूर्ति पूजा और पापाईवाद की उजाड़ने वाली शक्तियों द्वारा सेना और पवित्र स्थान का रौंदा जाना है, जिसे तितर-बितर और परमेश्वर के रोष के रूप में दर्शाया गया है। 220 वर्ष ने पवित्र स्थान को रौंदने के शैतानी कार्य के दर्शन को उसी मंदिर की पुनर्स्थापना के ईश्वरीय कार्य के दर्शन से जोड़ दिया। इसलिए 220 वर्ष एक ऐसा प्रतीक है जो एक पवित्र संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।
जिस प्रकार मिलराइट आंदोलन 663 के विद्रोह पर समाप्त हुआ और फिर 126 वर्ष बाद तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन आया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि दोनों आंदोलनों को सेवन टाइम्स
126 के प्रतीकवाद द्वारा जोड़ा गया था, उसी प्रकार 220 वर्षों ने 1880 रादिम में मिलर द्वारा बाइबल संदेश की स्थापना को 1711 में किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशन से जोड़ा, और ठीक वैसे ही उसी समयावधि ने फ्यूचर फॉर अमेरिका को अमेरिका की शुरुआत से जोड़ा, क्योंकि उसी ने अमेरिका के अंत की पहचान की।
30 अक्टूबर 1845 को वाचा का दूत अचानक उस मंदिर में आ पहुंचा जिसे उसने 1798 से, जो पहले कोप का अंत था, 1804 तक, जो अंतिम कोप का अंत था, 46 वर्षों में स्थापित किया था। मंदिर में उसके प्रवेश से पहले आधी रात की पुकार के आंदोलन में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ था, जिसका पूर्वाभास मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश से कराया गया था। ये दो गवाह सिद्ध करते हैं कि जब अंतिम दिनों में आधी रात की पुकार का आंदोलन दोहराया जाएगा, तब मसीह 144,000 का मंदिर स्थापित कर चुका होगा। वे दो आंदोलन, जिनमें 10 कुमारियों के दृष्टांत की आधी रात की पुकार पूरी होती है, परस्पर समानांतर है।
मेरा ध्यान अक्सर 10 कुमारियों के दृष्टांत की ओर दिलाया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका विशेष अनुप्रयोग इसी समय के लिए है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, अगस्त 19, 1899।
मिलराइटों का इतिहास। पहले स्वर्गदूत का आंदोलन परमेश्वर की सामर्थ्य की बढ़ती हुई अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जिसका आरंभ 1798 में दानियल की पुस्तक की मुहर खुलने पर हुआ। ये सामर्थ्य तब और बढ़ी जब 11 अगस्त 1840 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का स्वर्गदूत उतरा। फिर 19 अप्रैल 1844 की पहली निराशा आई, और अंततः 12 अगस्त 1844 से आरंभ हुए एक्सेटर कैंप मीटिंग में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना आरंभ हुआ, जो 22 अक्टूबर 1844 तक समस्त भूमि पर ज्वार की लहर की तरह फैलता रहा।
फ्यूचर फॉर अमेरिका, तीसरे स्वर्ग दूत का आंदोलन का इतिहास परमेश्वर की शक्ति के बढ़ते हुए प्रकट होने का प्रतिनिधित्व करता है, जो 1989 में दानियल की पुस्तक की मुहर खोले जाने से शुरू हुआ। ये शक्ति तब और बढ़ी जब 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य 18 का स्वर्गदूत उतरा। फिर 18 जुलाई 2020 की पहली निराशा आई, जो अंततः पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की ओर ले जाएगी, और वो पृथ्वी पर दावानल की तरह फैलता रहेगा जब तक कि मिकाएल उठ खड़ा न हो जाए और मानव परीक्षा काल समाप्त न हो जाए।
20,002,20,447 जिससे ये स्पष्ट होता है कि जल्द आने वाले रविवार के कानून के समय फिर से कई भविष्यवाणियां पूरी होंगी। उन भविष्यवाणियों में से एक दर्शन का विलंब है, जैसा कि हबक्कूक अध्याय 2 में प्रस्तुत है। हबक्कूक का दूसरा अध्याय पहले और तीसरे स्वर्गदूतों के आंदोलनों के अनुभव का वर्णन करता है। दोनों आंदोलनों को सही बाइबलीय पद्धति पर एक बहस का सामना करना पड़ता है, जो आंदोलन के प्रतिनिधियों और उन पूर्व में चुने गए लोगों के बीच होती है, जिन्हें बहस की प्रक्रिया के दौरान किनारे किया जा रहा होता है। पहले स्वर्गदूत के इतिहास के प्रहरियों द्वारा जिसकी रक्षा की जानी थी, वो संदेश, सच्चाइयों, मिलर के रत्न की पहचान था, जिन्हें अंततः 1843 और 1850 के दो पवित्र चार्टों पर निरूपित किया गया। वाद विवाद की प्रक्रिया में एक निराशा घटित होने वाली थी, जिसने दो विरोधी वर्गों से अलगाव को चिन्हित किया और विश्वास योग्यों को अधिक गहन समर्पण के लिए आह्वान किया। तब हबक्कूक मूलभूत सत्यों के परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल दो वर्गों के बीच का भेद बताता है। वो परीक्षण प्रक्रिया, जिसमें उन दो वर्गों के बीच की बहस भी शामिल थी, जो 22 अक्टूबर 1844 सेंताइत की शांत हो गई, ठीक वही समाप्त हुई जहां हबक्कूक का दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
परंतु प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने मौन रहे। हबक्कूक 2:20।
प्रभु अचानक अपने मिलेराइट मंदिर में प्रवेश कर गए, और तब सारी पृथ्वी को मौन रहना था, क्योंकि प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित्त का दिन आ पहुंचा था और मृतकों का न्याय आरंभ हो चुका था। हबक्कूक के अध्याय 2 का भविष्य सूचक इतिहास 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुआ, और यीशु सदा अंत को आरंभ के साथ पहचानते हैं, पवित्र स्थान और सेना को 2520 वर्षों तक पददलित किए जाने के दर्शन तथा पवित्र स्थान और सेना की पुनर्स्थापना के दर्शन, इन दो दर्शनों की शुरुआत साथ साथ हुई, किंतु उनके बीच 220 वर्षों का अंतर था, और जब वे समाप्त हुए तो उन्हें समाप्त के रूप में चिन्हित किया गया। हबक्कूक के अध्याय 3 का भविष्य सूचक इतिहास 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त हुआ। अम्मक मूर्ख तय रो हुआ अनाथधिक। जब शीच आने वाला रविवार का कानून लागू होगा, तब कई भविष्यवाणियां पूरी होंगी। उन भविष्यवाणियों में से एक दर्शन का विलंब है, जैसा कि हबक्कूक अध्याय 2 में प्रस्तुत किया गया है। हबक्कूक अध्याय 2 पहले और तीसरे स्वर्गदूतों के आंदोलनों के अनुभव को रेखांकित करता है। दोनों आंदोलनों को सही बाइबिलीय पद्धति के संबंध में एक बहस का सामना करना पड़ता है, जो उस आंदोलन के प्रतिनिधियों और उस पूर्व चुनी हुई प्रजा के बीच होती है, जिन्हें बहस की प्रक्रिया के दौरान किनारे किया जाया रहा होता है। तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास के पहरेदारों द्वारा जिसकी रक्षा की जानी है, वो संदेश उन सत्यों की पहचान है, मिलर के रत्न, जो अंततः 1845 और 1850 के दो पवित्र चार्टों पर दर्शाए गए थे। बहस की प्रक्रिया के दौरान एक निराशा हुई, जिसने दो विरोधी वर्गों के बीच विभाजन को चिह्नित किया और विश्वास योग्यों के लिए अधिक गहन समर्पण का आह्वान किया। फिर हबक्कूक मूलभूत सत्यों की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित इन दोनों वर्गों के बीच का भेद चिन्हित करता है। वो परीक्षा प्रक्रिया, जिसे इन दोनों वर्गों के बीच हुए विवाद द्वारा दर्शाया गया था, शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर पूर्णतः समाप्त होगी, ठीक वही जहां हबक्कूक का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था।
परंतु प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने मौन रहे। हबक्कूक 2:20।
प्रभु अचानक 144,000 के मंदिर में प्रवेश करेंगे और तब सारी पृथ्वी मौन हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित्त का दिन जीवितों के न्याय तक पहुंच जाएगा। हबक्कूक के दूसरे अध्याय का भविष्य सूचक इतिहास शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होता है, और यीशु सदा किसी बात के अंत की पहचान उसकी शुरुआत के साथ करते हैं। जीवितों का न्याय 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुआ, परंतु न्याय एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया परमेश्वर के घर से शुरू होती है और फिर ऐसे बिंदु तक पहुंचती है जहां न्याय परमेश्वर के घर के बाहर वालों पर आता है। जब न्यूयॉर्क शहर की विशाल इमारतें गिरा दी गईं, तब वो न्याय आरंभ हुआ, जिसका प्रतीक वो मुहर लगाने वाला स्वर्गदूत है, जो यरूशलेम से होकर गुजरता है और उन पर एक चिन्ह लगाता है, जो कलीसिया में और देश में किए जाने वाले घृणित कर्मों के कारण कराहते और रोते हैं। शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय तक मसीह 144,000 का मंदिर खड़ा करने का कार्य पूरा कर चुका होगा और विनाशक स्वर्गदूत यरूशलेम पर न्याय लेकर आएंगे। 144,000 तब एक पताका के रूप में ऊंचे उठाए जाते हैं और दूसरे झुंड के लिए जीवितों का न्याय आरंभ होता है, जो दानियल के 11वें अध्याय के 41वीं पद में एदूम, मोआब और अम्मोन के पुत्रों के प्रधान द्वारा दर्शाया गया है। चाहे पहले स्वर्गदूत के मिलरवादी आंदोलन पर विचार करें या तीसरे स्वर्गदूत के शक्तिशाली आंदोलन पर, सुधारवादी आंदोलन का संपूर्ण इतिहास सत्य के क्रमशः बढ़ते हुए प्रकाशन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सत्य के पवित्र आत्मा के उंडेले जाने पर अपनी परिणति पर पहुंचता है। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों का केंद्र बिंदु है। यही कारण है कि मूर्ख कुंवारियों के पास तेल नहीं होता और बुद्धिमान कुंवारियों के पास होता है। तेल ही वो वर्षा है।
वे कहते हैं, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ दे और वो उससे अलग होकर किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वो फिर उसके पास लौटेगा? क्या वो देश बहुत ही अशुद्ध न हो जाएगा? परंतु तूने तो बहुत से प्रेमियों के साथ वेश्यागिरी की है, तो भी मेरे पास लौटा, यहोवा की ये वाणी है। अपनी आंखें ऊंचे स्थानों की ओर उठा और देख, कहाँ ऐसा स्थान है जहां तुझसे सहवास न किया गया हो। मार्गों में तू उनके लिए बैठती रही, जैसे मरुभूमि में कोई अरबी बैठता है, और तूने अपनी वेश्यावृत्ति और अपनी दुष्टताओं से उस देश को अशुद्ध कर दिया है। इसलिए वर्षाएं रोक दी गई हैं और पिछली वर्षा नहीं हुई, और तेरा ललाट वेश्या जैसा निर्लज्ज रहा, तू लज्जित होना नहीं चाहती थी। क्या अब से तू मुझसे ये नहीं पुकारेगी, मेरे पिता, तू मेरी युवावस्था का मार्गदर्शक है? यिर्मयाह 3:1-4।
उस पद्यांश में और सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के विषय में बोलते हैं, परमेश्वर ये पहचानते हैं कि उनकी प्रजा ने व्यभिचार किया है, यहाँ तक कि उनका ललाट वेश्या जैसा हो गया है। अंतिम दिनों की वेश्या पापाई सत्ता है और ललाट जानबूझकर किए गए निर्णय का प्रतीक है। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा दुष्ट है, परंतु परमेश्वर अंतिम बुलाहट दे रहे हैं, यद्यपि वे उस स्थिति तक पहुँच गए हैं जहाँ उन्होंने वेश्या के समान ही निर्णय कर लिया है। उन्होंने ऐसा चरित्र विकसित कर लिया है जो चौथी पीढ़ी द्वारा दर्शाया गया है, जहां वे सूर्य की उपासना करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि यहेजकेल अध्याय 8b चौथी पीढ़ी द्वारा दर्शाया गया है।
नैतिक अंधकार के बीच सच्चे प्रकाश के चमकने का समय आ गया है। तीसरे स्वर्गदूत का संदेश संसार भर में भेजा गया है, जो मनुष्यों को ये चेतावनी देता है कि वे अपने माथों पर या अपने हाथों में पशु का चिन्ह या उसकी प्रतिमा का चिन्ह न लें। इस चिन्ह को ग्रहण करना अर्थात वही निर्णय करना जो पशु ने किया है, और उन्हीं विचारों का समर्थन करना जो परमेश्वर के वचन के प्रत्यक्ष विरोध में हैं। जो कोई ये चिन्ह ग्रहण करता है उसके विषय में परमेश्वर कहता है, वह भी परमेश्वर के प्रकोप की उस मदिरा को पिएगा जो उसके रोष के प्याले में बिना मिलावट अंडेली गई है, और वह पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक से यातना पाएगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, 13 जुलाई 1857।
यिर्मयाह अंतिम दिनों के परमेश्वर के लोगों को इस रूप में पहचानते हैं कि वे पहले से ही व्यभिचारिणी का माथा लिए हुए हैं। वे पशु का चिन्ह लेने के कगार पर हैं, क्योंकि वे दुष्ट हैं। अभी अभी उद्धृत किए गए खंड में बहन व्हाइट आगे कहती है,
यदि सत्य का प्रकाश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया है जो चौथी आज्ञा के सप्त को प्रकट करता है और ये दिखाता है कि परमेश्वर के वचन में रविवार के पालन का कोई आधार नहीं है, और फिर भी तुम झूठे सप्त से चिपके रहते हो, उस सप्त को पवित्र मानने से इनकार करते हुए जिसे परमेश्वर मेरा पवित्र दिन कहता है, तो तुम पशु का चिन्ह ग्रहण करते हो। ये कब होता है? जब तुम उस फरमान की आज्ञा मानते हो जो तुम्हें रविवार के दिन काम छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने का आदेश देता है, जबकि तुम जानते हो कि बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं है जो ये दिखाए कि रविवार साधारण कामकाजी दिन के सिवा कुछ और है, तब तुम पशु का चिन्ह लेने के लिए सहमति देते हो और परमेश्वर की मुहर से इनकार करते हो। यदि हम ये चिन्ह अपने माथे पर या अपने हाथ में प्राप्त करें तो अवज्ञाकारियों के विरुद्ध घोषित किए गए दंड हमारे ऊपर अवश्य आएंगे, परंतु जीवित परमेश्वर की मुहर उन पर लगाई जाती है जो विवेकपूर्वक प्रभु के सप्त का पालन करते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई थी, और उसके हृदय के विचारों की हर कल्पना निरंतर केवल बुराई ही थी। पृथ्वी भी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई थी, और पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। और परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। देखो, मैं पृथ्वी समेत उन्हें नष्ट कर दूंगा। वे नष्ट कर दिए जाने वाले थे क्योंकि उन्होंने उस पृथ्वी को दूषित कर दिया था जिसे परमेश्वर ने धर्मी लोगों के आनंद हेतु बनाया था। जैसा नूह के दिनों में था, मसीह ने कहा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और क्या ऐसा नहीं है? जो कोई भी दैनिक समाचार पत्रों को देखेगा वो अपराधों की एक लंबी सूची देख सकता है। मद्यपान, चोरी, डकैती, गबन, हत्या, कभी कभी पूरे परिवारों की हत्या कर दी जाती है ताकि किसी मनुष्य की उन धन या वस्तुओं पर अधिकार पाने की इच्छा जो उसकी नहीं है पूरी हो जाए। वास्तव में संसार नूह के दिनों जैसा ही होता जा रहा है, क्योंकि लोग खुलेआम परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 13, 1857।
यिर्मयाह अंतिम दिनों की परमेश्वर की उस प्रजा की पहचान कर रहा है जो सूर्य के सामने झुकने ही वाली है, और ऐसा करते हुए वो ये बताता है कि बौछारें रोक ली गई हैं और पछली वर्षा हुई ही नहीं, और तेरे माथे पर वेश्या का ललाट है,
तू लज्जित होना नहीं चाहती। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के दुष्ट लोग पछली वर्षा नहीं पा रहे हैं और वे लज्जित होने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके विचार निरंतर बुरे हो गए हैं, जैसा कि नूह के इतिहास से दर्शाया गया है और साथ ही यहेजकेल अध्याय 8 की दूसरी घृणित बात में वर्णित चित्रों के कक्षों से भी। यिर्मयाह अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के निर्लज्ज दुष्टों को इस ओर इंगित करता है कि वे उस समय से अपने यौवन के मार्गदर्शक की ओर पुकार करें। एडवेंटिज्म के आरंभिक दिनों का मार्गदर्शक हबक्कू की दो तालिकाएं और उन पर दर्शाए गए रत्न थे। अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा के दुष्टों पर अनंत मृत्यु लाने वाली उस दुष्टता से बाहर निकलने की एकमात्र आशा यही है कि उस परमेश्वर को पुकारा जाए जो आरंभ में मार्गदर्शक था, जो 1798 में अंत के समय पर पहुंचा। पहले या तीसरे स्वर्गदूत के इतिहास में मुख्य प्रश्न ये है कि आप अंतिम वर्षा को ग्रहण करते हैं या नहीं। 11 सितंबर 2001 को जब राष्ट्र आक्रोशित हो उठे, तब अंतिम वर्षा आरंभ हुई।
उस समय जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर क्लेश आएंगे और राष्ट्र क्रोधित होंगे, फिर भी उन्हें इस प्रकार नियंत्रित रखा जाएगा कि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न पड़े। उसी समय परवर्ती वर्षा या प्रभु की उपस्थिति से मिलने वाली ताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची आवाज को शक्ति मिले और संतों को तैयार किया जाए कि वे उस अवधि में दृढ़ बने रहें जब 7 अंतिम विपत्तियां उंडेली जाएंगी। प्रारंभिक लेखन 85।
अंतिम वर्षा, जिसे ताजगी भी कहा गया है, तब शुरू हुई जब राष्ट्र क्रोधित हुए और उसी समय उद्धार का कार्य समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के 4 स्वर्गदूत 144,000 के मुद्रांकन के पूरा होने तक 4 पवनों को रोके हुए हैं, और यहेजकेल अध्याय 9 में उस कार्य को इस प्रकार दर्शाया गया है कि स्वर्गदूत उन पर चिन्ह लगाते हैं जो यरूशलेम में किए जा रहे घृणित कामों के कारण आह भरते और विलाप करते हैं। 11 सितंबर 2001 को स्वर्गदूतों ने 144,000 के ललाटों पर चिन्ह लगाने के समापन का कार्य आरंभ किया।
तीसरे स्वर्गदूत का समापन कार्य अंतिम वर्षा के उंडेले जाने के दौरान पूरा होता है, जिसे पुनर्स्फूर्ति भी कहा जाता है,
जो एक संदेश है
जिनसे उसने कहा, ये वो विश्राम है जिससे तुम थके हुओं को विश्राम दिला सकते हो, और ये वो ताजगी है, तो भी वे सुनना नहीं चाहते थे। यशाया 28:12।
यशाया में जिस संदेश को वे सुनने से इंकार करते हैं, वही हकलाती जिह्वाओं द्वारा दिया गया संदेश है और वही पंक्ति पर पंक्ति की पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाला कसौटी का संदेश है।
परंतु उनके लिए यहोवा का वचन ऐसा हुआ, उपदेश पर उपदेश, उपदेश पर उपदेश, रेखा पर रेखा, रेखा पर रेखा, यहां थोड़ा वहां थोड़ा, ताकि वे जाकर पीछे की ओर गिरे और टूटे और फंसे और पकड़े जाएं। इसलिए हे ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम में इस प्रजा पर शासन करते हो, यहोवा का वचन सुनो, क्योंकि तुमने कहा है, हमने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है और अधोलोक के साथ हम समझौते में हैं। जब वो उमड़ती प्रचंड विपत्ति गुजरेगी, वो हम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमने झूठ को अपना शरण स्थान बनाया है और असत्य के नीचे हमने अपने को छिपाया है। यशाया 28:13-15।
प्रभु का वचन, जो विश्राम और ताजगी अंतिम वर्षा का संदेश है, जिससे वे जाते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं, टूटते हैं, फंसते हैं और पकड़े जाते हैं, उन उपहास करने वाले पुरुषों को दिया गया है जो यरूशलेम में इस प्रजा पर शासन करते हैं। यरूशलेम वो स्थान है जहां स्वर्गदूत उन पर चिन्ह लगाते हैं जो आहें भरते और रोते हैं, और वे बुजुर्ग पुरुष जिन्होंने अपने दायित्व से विश्वासघात किया है, सबसे पहले गिरते हैं।
उद्धार का चिन्ह उन पर रख दिया गया है जो किए जाने वाले सब घृणित कामों के कारण आहें भरते और रोते हैं। अब मृत्यु का दूत निकल पड़ता है, जिसे यहेजकेल के दर्शन में वध करने के हथियार लिए हुए पुरुषों द्वारा दर्शाया गया है, जिन्हें ये आज्ञा दी गई, बूढ़ों और जवानों दोनों को, कुंवारियों, छोटे बच्चों और स्त्रियों को पूरी तरह मार डालो, पर जिस किसी व्यक्ति पर चिन्ह हो उसके निकट न आना और मेरे मंदिर से आरंभ करना। भविष्यद्वक्ता कहता है, उन्होंने उन प्राचीन पुरुषों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। यहेजकेल 9-6। विनाश का कार्य उन लोगों के बीच आरंभ होता है जिन्होंने अपने आप को लोगों के आत्मिक रक्षकों के रूप में घोषित किया है। झूठे पहरेदार सबसे पहले गिरते हैं। न किसी पर दया की जाती है, न किसी को छोड़ा जाता है। पुरुष, स्त्रियां, कुवारियां और छोटे बच्चे साथ साथ नाश हो जाते हैं। महान विवाद 647 पर।
हम 1989 में हुई ज्ञान वृद्धि पर चर्चा अगले लेख में जारी रखेंगे।
जो बाहरी रूप के नीचे तक देखता है, जो सब मनुष्यों के हृदयों को पढ़ता है, वो उन लोगों के विषय में जिन्हें महान ज्योति प्राप्त हुई है कहता है, वे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक दशा के कारण न तो दुखित हैं और न विस्मित। हाँ, उन्होंने अपने ही मार्गों को चुन लिया है और उनकी आत्मा उनकी घृणित वस्तुओं में प्रसन्न होती है। मैं भी उनके भ्रम को चुनूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हें उन पर ले आऊंगा, क्योंकि जब मैंने पुकारा तब किसी ने उत्तर न दिया, जब मैंने कहा तब उन्होंने न सुना, परंतु उन्होंने मेरी आंखों के सामने बुराई की और उसे चुना जिसमें मुझे प्रसन्नता न थी। परमेश्वर उन पर प्रबल भ्रांति भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण न किया जिससे उनका उद्धार होता, वरन अधर्म में आनंद मानते रहे। यशाया शानिशक 3:3-4, 2 थिस्सलुनीकियों 2:11-10-12। स्वर्गीय शिक्षक ने पूछा, मन को भ्रमित करने वाला इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है कि आप ये दिखावा करें कि आप सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और कि परमेश्वर आपके कार्यों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में आप बहुत सी बातें सांसारिक नीतियों के अनुसार कर रहे हैं और यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ओह, ये एक बड़ा छल है, एक मोहक भ्रम जो मन पर अधिकार कर लेता है, जब वे लोग जिन्होंने कभी सत्य को जाना है भक्ति के बाहरी रूप को उसकी आत्मा और सामर्थ्य समझ बैठते हैं, जब वे ये मान लेते हैं कि वे धनी हैं और संपत्ति में बढ़ गए हैं, इससे परमेश्वर सही नींव पर निर्माण कर रहे हैं और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जबकि वास्तव में उन्हें हर चीज की आवश्यकता है। टेस्टिमोनीज खंड 8, 242-250।